ओम शांति। सभी एक बार और बोलिए ओम शांति। सुबह से आप सभी यहाँ पे बैठे हुए हैं। आज का ये दोपहर तक का लास्ट सत्र है। आज मुझे जो सेवा दी है कि बिजनेस इंडस्ट्री विंग के बारे में बताने की, आप सभी लगभग यहाँ पहली बार आए और आपको वहाँ पे हमारे लोकल सेंटर के द्वारा कई बार संपर्क किया गया होगा कि आप हमारे माउंट आबू चलिए, वहाँ पे आप प्रोग्राम अटेंड करिए। तो कई लोग तो यहाँ भाग्यशाली थे, पहुँच गए, कई लोग पहुँच नहीं पाए। और कई लोगों को ऐसा लगता है जब हमारी बहनें संपर्क करती है तो उनको कहीं ना कहीं डर रहता है कि पता नहीं वहाँ जाने से क्या होगा। क्योंकि मैं लोकल राजस्थान से हूं, तो आज से 30 साल पहले हम जहां पे भी संस्था से जब जुड़े तो बहुत सारी भ्रांतियां थी। जब मैं इस संस्थान से जुड़ा तो लोगों ने कहा कि वहां पे मत जाना, वहां जाने से क्या होता है कि घर बार सब छुड़ा देते हैं, परिवार छूट जाता है, व्यापार छूट जाता है, वापस कोई लौट के आता नहीं है। तो अनेकानेक भ्रांतियां होती है, लेकिन जब जुड़ते हैं तो पता पड़ता है कि वास्तव में यही जीवन की सच्चाई है। तो बिजनेस इंडस्ट्री विंग लगभग 30 सालों से व्यापार और उद्योग से जुड़े हुए वर्ग की सेवा करती आ रही है। और इसमें हमने देखा कि जिन लोगों की हमने सेवाएं की उनके जीवन में काफी परिवर्तन आया है। क्योंकि व्यापारी का मतलब ये होता है कि बिजनेसमैन, बिजी मैन, उसके पास टाइम नहीं होता, सुबह से लेकर रात तक वो इसी कार्य में लगा रहता है। तो जैसे कहते हैं, मनुष्य एक तिराए पे खड़ा हुआ है, एक व्यापारी एक तिराए पे खड़ा है, एक तरफ उसका व्यापार है, दूसरी तरफ उसका परिवार है और तीसरी तरफ वो खुद है। अगर वो व्यापार को टाइम देता है तो परिवार को टाइम नहीं दे पाता है, क्योंकि बिजनेस में टाइम देना भी बहुत जरूरी है। आज आए दिन हम देखते रहे, निरंतर अपडेट होता जा रहा है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट इतना हो रहा है कि जो चीज आज फैशन में है वो 10 दिन बाद आउटडेट हो जाती है। तो मार्केट में रहना भी जरूरी है। जब परिवार को टाइम नहीं देते तो परिवार वाले भी नाराज होते हैं कि आप हमारे को टाइम नहीं देते, हमारे बच्चों को टाइम नहीं देते। अगर दोनों को टाइम देते हैं तो खुद के लिए तो समय नहीं बचता, इसलिए क्या होता, हमारा पूरा हेल्थ खराब हो जाता। फिर स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए हम दवाइयों का सहारा लेते हैं। तो बिजनेस इंडस्ट्री विंग यही सेवा करती है कि जो व्यापार और उद्योग से जुड़े हुए जो भी महानुभाव है उनकी हम सेवाएं करें। हमारी वरिष्ठ दादियों ने, दीदियों ने, बाबा ने ये प्रेरणा दी कि व्यापारी सबकी सेवाएं करता। आप जहां भी देखेंगे, कोई धार्मिक कार्य हो, कोई राजनीतिक कार्य हो, किसी ना किसी तरीके से प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से व्यापारी जरूर इन्वॉल्वमेंट होता है। तो व्यापारी सबकी सेवाएं करते हैं, लेकिन व्यापारी की कोई सेवा करते हैं? व्यापारी सबका, किसी भी क्षेत्र में देख लो, चाहे अनाथ आश्रम चलाना हो, धर्मशाला चलाना हो, कुछ भी करना हो, हर कहीं ना कहीं वो दान पुण्य करता ही रहता है। लेकिन उसके जीवन में क्या गुजर रही है, उसके लाइफ में क्या हलचल हो रही है, उसके बारे में कोई सोचता नहीं। तो हमारे बाबा ने, दादियों ने ये प्रेरणा दी कि इनकी भी सेवाएं बहुत जरूरी है। और इस अनुभव से हमने देखा कि वास्तव में उनके जीवन में काफी चेंजेज आया। व्यापार तो करते हैं लेकिन व्यापार के साथ साथ तनाव बहुत होता है, क्योंकि आए दिन चैलेंजेज नए नए तरीके से आते रहते हैं, बहुत अलग तरीके से चैलेंजेज बढ़ते जाते हैं, उनको हम कैसे सामना करें। अंदर में इनर पावर नहीं है, सामना करने की शक्ति नहीं है, इसलिए हम टेंशन में आ जाते हैं। तो व्यापारियों के लिए हमारा एक टॉपिक होता है बहुत अच्छा, तनाव घटाओ व्यापार बढ़ाओ। हम हमेशा प्रॉफिट के बारे में सोचते रहते हैं कि मुझे प्रॉफिट मिले, प्रॉफिट मिले, लेकिन कैसे मिलेगा। व्यापार आपका चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे 1000 रुपए कमाते हो, चाहे 10,000 कमाते हो, चाहे करोड़ कमाते हो, लेकिन अगर उसमें टेंशन रहेगा तो सफलता कभी मिल ही नहीं सकती। क्योंकि जब हम टेंशन करेंगे तो फिर क्या करेंगे, फिर हम अपनी दुकान पर जाएंगे, फैक्ट्री पर जाएंगे या कंपनी में जाएंगे, तो हम अपने साथियों पर गुस्सा करेंगे, साथियों पे करने के साथ साथ जो भी कस्टमर आएगा उस पर भी गुस्सा करेंगे। तो व्यापार बढ़ेगा या घटेगा, क्या होगा? घटेगा। हम सोचते हैं कि नहीं, व्यापार मेरा बढ़ता जाना चाहिए, लेकिन हमारे अंदर पेशेंस खत्म हो गया और जब टेंशन होता है तो हम बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं और गुस्से के कारण हमारा व्यवहार खराब होता है और व्यवहार से हमारे से कस्टमर, हमारे कर्मचारी, हमारे साथी हमारे से दूर भागते चले जाते हैं। फिर सोचते हैं मेरे जीवन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है और हम गुस्सा इतना ज्यादा करते हैं कि छोटी सी बात को बड़ा बना देते हैं। इसलिए गुस्सा कंट्रोल करने की ताकत नहीं है। आप में से कितने लोगों को गुस्सा आता है? सबको ही आता है। फिर क्या करते हैं? व्यापार में तो गुस्सा होना ही नहीं चाहिए। अगर व्यापार में गुस्सा किया तो व्यापार कभी बढ़ ही नहीं सकता। व्यापार में पोलाइट चाहिए, नम्रता चाहिए, दिव्य गुण चाहिए। इसलिए कहते हैं गुस्से को ना तो बाहर निकालना है ना दबाना है। गुस्से को बाहर निकालेंगे और दबाएंगे तो दो कोट वाले के पास जाने पड़ेगा। गुस्से को अंदर दबाएंगे तो सफेद कोट वाले के पास जाना पड़ेगा। सफेद कोट वाला कौन? और गुस्से को बाहर निकालेंगे तो काले कोट वाले के पास जाना पड़ेगा। काला कोट वाला कौन? वकील साहब। समझो मैं रोड पे जा रहा हूं बारिश का मौसम में, सामने से बाइक वाला आया और उसने स्पीड से बाइक चलाई, गड्ढे में कीचड़ भरा हुआ था, कीचड़ मेरी शर्ट पे लग गया, मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसको दो तीन अपशब्द बोल दिए। वो भी गुस्से वाला ही था, उसने मुझे दो चार गालियां दे दी, वो मेरे से सहन नहीं हुई, मुझे और गुस्सा आ गया, मैंने थप्पड़ लगा दी, उसने भी दो तीन लगा दी। बात इतनी ज्यादा हो गई कि हमने आपस में मारपीट कर दी, किसी ने पुलिस वाले को फोन कर दिया, पुलिस वाला उठा के ले गया, FIR दर्ज करी, उठा के सीधा जेल में डाल दिया। जेल में चले गए। जेल में क्यों गए? क्योंकि उसने गाली दी, वो मेरे से सहन नहीं हुई, बहुत गुस्सा मुझे आया। अब आप देखिए जेल में जाने के बाद पुलिस वाला जेलर और कैदी उससे ज्यादा और गंदी गाली देते हैं, देते कि नहीं देते? और वहां हम सहन करते कि नहीं करते? सहन करते हैं। यानी कि हमारे अंदर कंट्रोलिंग पावर है लेकिन हम जगह नहीं देखते कहां हमें कंट्रोल करना चाहिए। तो वही जगह अगर हम यहां पॉजिटिव यूज करते, कीचड़ है लग गया शर्ट पे, कोई बात नहीं, हम प्यार से बोलते भैया कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना, अपने कमरे पे आते आराम से शर्ट चेंज करते, हमारा लाइफ ठीक हो जाता। तो हम सभी के जीवन में कहीं ना कहीं गुस्सा और टेंशन एक बहुत बड़ा योगदान करता है, जो ना केवल व्यापार में विघ्न बढ़ता है, साथ ही साथ हमारे परिवार में भी नुकसान करता है। आज आप देख लो घरों में भी गुस्से के कारण कितने सेपरेट हो रहे हैं, कितने डिवोर्स केसेस हो रहे हैं। तो उसको हमें जीवन में चेंजेस लेके आना पड़ेगा। तो यहां जो प्रोग्राम रखा है, बहुत ही अच्छा एक प्रोग्राम रखा है, आपने सुबह से सुनी रहे हो, आध्यात्मिक जागृति। अंदर में हमें अवेयरनेस लेके आना है। हम सभी कहीं ना कहीं किसी धर्म से, किसी अनुष्ठान से जुड़े होते हैं, धार्मिक क्रियाएं कांड हम करते रहते हैं, लेकिन जीवन में शांति नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? कहीं ना कहीं हमारे अंदर आध्यात्मिकता की कमी है। वो आध्यात्मिकता कहां से हम लेके आए? तो यहां वो विधि बताई जाती है। जब जीवन में प्रॉब्लम होती है, हम लोगों के पास जाते हैं कि मेरे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, कोई उपाय बताओ, तो कई उपाय देने वाले भी बहुत होते हैं कि आप एक काम करो, आप अपना मकान बदल लो। मकान क्यों बदल लो? क्यों बदल लो? आपका वास्तु ठीक नहीं, आदमी मकान बदल लेता है। फिर कहता है कि आप ऐसा करो, इस कलर की आप अंगूठी पहना करो, वो अंगूठी बदल लेता है। फिर कहता है आप इसी कलर के कपड़े पहना करो, उसी कलर के कपड़े पहन लेता है। फिर कहता है कि आप इसी कलर की चीजें रखा करो, यही कलर होना चाहिए, गाड़ी का, टीवी का, फ्रिज का, सबका, वो भी कर लेता है। जो जो लोग उसको सलाह देते गए सब कुछ चेंज करता गया, फिर भी वो दुखी रहने लगा, परेशान है। कारण क्या है? सब कुछ बदल लिया लेकिन क्या नहीं बदला? अपने आप को नहीं बदला। इसलिए गालिब ने कहा कि जिंदगी भर अक्सर एक ही भूल में करता रहा, धूल चेहरे पे लगी थी और मैं आईना साफ करता रहा, है ना। तो हम अपने जीवन में जो भी परेशानियां होती है, हम दूसरों को ही दोष देते हैं कि मेरे जीवन में जो परेशानियां हैं उसका कारण यही है। तो आध्यात्मिकता मतलब क्या? आध्यात्मिकता मतलब जैसे कि एक नाव के अंदर चार लोग सवारी कर रहे थे, एक डॉक्टर थे, दूसरे वकील थे, तीसरे इंजीनियर थे और चौथा स्वयं नाविक था। नाव इस पार से उस पार जा रही थी, आपस में वार्तालाप करने लगे। डॉक्टर ने कहा कि ये बताओ, हमारे शरीर में इतने सारे रोग होते हैं और किस रोग की कौन सी दवा दी जाती है, कुछ जानकारी है? बोला मुझे कुछ जानकारी नहीं, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, सुबह से लेकर रात तक मैं मजदूरी करता हूं। तो डॉक्टर साहब कहते तेरे कुछ भी पता नहीं? बोला नहीं, कुछ भी पता नहीं, तो तेरी तो 25% जिंदगी बेकार है। फिर नाव आगे बढ़ने लगी। फिर इंजीनियर कहता है कि हमारे बड़ी बड़ी मेगा सिटी में 20 मंजिल 25 मंजिल जो बिल्डिंग बनाई जाती है उसको कैसे डिजाइन किया जाता है, कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, कुछ जानकारी है? नाविक कहता नहीं, मुझे उसके बारे में पता नहीं है। तो इंजीनियर कहता है तेरी 50% जिंदगी बेकार है। और नाव आगे बढ़ने लगती है। फिर वकील कहता है कि हमारे देश में इतने सारे अपराध होते हैं और किस अपराध की कौन सी सजा दी जाती है कुछ पता है? बोला नहीं, मुझे वो भी मालूम नहीं है। तो वकील साहब कहते हैं तेरी तो 75% जिंदगी बेकार है। और नाव आगे बढ़ने लगती है। नाव में हल्का सा कहीं छेद था, उसमें पानी घुसने लगता है, नाव डूबने को आती है। नाविक तीनों से पूछता है, आप तीनों में से किसी को तैरना आता है? बोला तैरना तो नहीं आता है। बोला तुम्हारी तो 100% जिंदगी बेकार है। तो वैसे ही हमें अपने जीवन में क्या चाहिए? आध्यात्मिकता चाहिए। अगर आध्यात्मिकता नहीं है तो हम जीवन जी नहीं सकते। जीवन में उतारना बहुत जरूरी है, क्योंकि परिस्थितियां बहुत तेजी से बदल रही है, तो परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को भी बदलना पड़ेगा। आज से 20 साल पहले आपके सामने जो प्रॉब्लम आई थी उसका सोल्यूशन आपने उस टाइम जो किया था वो आज नहीं हो सकता। आज से 40 साल पहले हम जो युद्ध करते थे बंदूकों से, तलवारों से, तोपों से करते थे, मिसाइलों से करते थे, आजकल तो क्या हो गया? देख रहे हैं ना आसपास टीवी चैनलों में, देख रहे क्या हो गया? ड्रोन आ गए, तुरंत के तुरंत खत्म हो जाते हैं। तो युद्ध का स्तर भी बदलता जा रहा है, लड़ाइयां भी बदलती जा रही है। तो चैलेंजेज भी अपने सामने, हमारे सामने आ रहे हैं, उनको भी बदलना पड़ेगा। तो कैसे बदलना पड़ेगा? जैसे कि एक बार एक कैब सेलर था, एक व्यापारी था, वो टोपियों का बिजनेस करता था। गांव-गांव जाता था, टोपियां बेचता था। एक बार वो टोपी की गठरी लेके जा रहा था, उसको नींद जैसा महसूस हुआ और वो पेड़ के नीचे बैठ गया और वहां पे सो गया। नींद खुली तो क्या देखा? उसकी सारी टोपियां गायब थी। चारों तरफ उसने नजर घुमाई, कहीं टोपियां दिखाई नहीं दी। देखा पेड़ के ऊपर सब बंदरों ने टोपियां लगाई हुई है। उसने अपनी टोपी नीचे फेंकी, बंदरों ने भी टोपी नीचे फेंक दी। सारी टोपी इकट्ठी करके वो गठरी बांध के वापस अपने घर आया। यहां तक तो शायद आपने स्टोरी सुनी होगी। अब वही बिजनेस उसके बेटे ने किया, वही बिजनेस उसके पोते ने भी किया। पोता भी गांव-गांव जाता था, टोपियां बेचता था। एक बार वो गठरी लेके जा रहा था, उसको नींद जैसा महसूस हुआ, पेड़ के नीचे सो गया। और जब नींद खुली तो उसने देखा कि पूरी टोपियां गायब है। उसकी सीधी नजर पेड़ के ऊपर गई, पेड़ पर बंदरों ने टोपियां लगाई हुई थी। अब उस व्यापारी ने अपनी टोपी नीचे फेंकी। जैसे ही टोपी नीचे फेंकी तो जो बंदरों का सरदार था वो नीचे उतर के आया। उसने टोपी उठाई, अपने सिर पे लगाई और इस व्यापारी को एक जोरदार थप्पड़ मारा। व्यापारी कहता भाई थप्पड़ क्यों मारा? बंदर ने कहा कि भाई तूने टोपी नीचे क्यों फेंकी? तो व्यापारी ने कहा कि मेरे दादाजी ने कहा था कि बंदर जो है नकलची होते हैं, तुम जैसा कहोगे वैसा ही वो करेगा। तो बंदर ने भी कहा कि केवल तेरे ही दादाजी ने कहा था? मेरे दादाजी ने भी कहा था बेटा एक बार मूर्ख बन गए, बार बार मूर्ख मत बनना। तो आज के टाइम बिजनेस के अंदर में हम किसी को एक बार तो मूर्ख बना सकते हैं, बार बार नहीं बना सकते, क्योंकि वो आपके पास आने से पहले गूगल में ये वो सब सर्च करके आता है। तो आज के टाइम ये बहुत जरूरी, जो चैलेंजेज आते हैं उसके लिए हमें भी फार्मूले चेंज करने पड़ेंगे। तो बिजनेस इंडस्ट्री विंग जो है सालों साल ज्ञान सरोवर कैंपस में और शांतियों में ऐसे कॉन्फ्रेंसेस का, सेमिनार का, वर्कशॉप का आयोजन करती है। भारत के अनेक बड़े बड़े शहरों में हम जाकर के व्यापारियों और उद्योगपतियों को मोटिवेट करते हैं, उनको मेडिटेशन सिखाते हैं और मेडिटेशन से क्या क्या फायदे होते हैं, ना केवल परिवार में लेकिन साथ साथ व्यापार में भी बहुत बड़ा फायदा होता है। क्योंकि जब हम मेडिटेशन करते हैं हमारे अंदर निर्माणता आती है, धैर्यता आती है और हमारे जो अंदर वैल्यू है, इनर पावर है, वो बढ़ती है। क्योंकि ये जो योग है ये हमेशा ही काम आने वाला है। बाहर की दुनिया में जो आजकल योग चल रहा है वो हमेशा काम नहीं आता है, क्रेज तो बहुत है उसका। 21 जून को हम योगा डे भी मनाते हैं, अनुलोम विलोम, कपाल भाति, सूर्य नमस्कार, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब सिचुएशन आती है तब वहां ये योग काम नहीं आता है। आप सभी बिजनेस करते हो, आपको पता है कि अचानक इनकम टैक्स का ऑफिसर कोई आ गया, जीएसटी अधिकारी आ गया, कोई पुलिस वाला आ गया, तो उस टाइम कौन सा योग करेंगे? अनुलोम विलोम करेंगे तो काम चलेगा? कपाल भाति करेंगे तो काम चलेगा? उस टाइम चाहिए धैर्य आसन, उस टाइम चाहिए मुस्कासन। आपके अंदर जितना धैर्यता होगी, जितनी गंभीरता होगी, उतना ही आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो मेडिटेशन सिखाया जाता है, ये इसीलिए लोगों को प्रेरणा देते हैं कि इस मेडिटेशन का अभ्यास करो, अपने प्रैक्टिकल फील्ड में भी आप करो। तो काफी समय से हम प्रोग्राम करते आ रहे हैं और जगह जगह कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। अभी लेटेस्ट हमें एक और नया सेवा का अपॉर्चुनिटी मिली है कि भारत के बड़े बड़े शहरों में ट्रेड एक्सपो लगाए जाते हैं। वहां पे जो भी बिजनेसमैन होते हैं, उद्योगपति होते हैं, वो अपना प्रोडक्शन लेके आते हैं, स्टोर लेकर के अपना जो भी प्रोडक्ट है वो डिस्प्ले करते हैं। B2B उनका बिजनेस होता है। हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई हमें भी एक स्टॉल दे दो सेवा करने के लिए, तो वो कहते हैं आप तो धार्मिक लोग, आपका क्या काम है इसमें, आप लोग बिजनेस के बारे में क्या जानते हो, आप तो ओम शांति वाले। फिर हम उनको समझाते हैं कि बिजनेस तो आप करते हैं लेकिन बिजनेस के अंदर वैल्यूज भी चाहिए, शांति भी चाहिए, प्रेम भी चाहिए। आप प्यार से बात नहीं करें तो कौन बिजनेस करेगा। तो फिर थोड़ा थोड़ा उनको समझ में आता है, फिर वो लोग हमें स्टॉल देते हैं। और स्टॉल में जब हम मेडिटेशन का अभ्यास कराते हैं और उनको बताते हैं कि मेडिटेशन से कितना फायदा है, कितने हम तनाव मुक्त रह जाते हैं, तो उनको रियल में रियलाइज होता है कि ये वाकई में वर्तमान समय की बहुत जरूरत है। तो इस तरह से हमने लगभग 25 से 30 एक्सपो किए हैं। आपने नाम सुना होगा वाइब्रेंट गुजरात, उसमें भी हमने एक्सपो में स्टॉल लगाया था और ये बहुत अच्छे इसके रिजल्ट हुए। इससे बहुत सारी कंपनीज हमारे संपर्क में आती है और वो हमारे यहाँ पे ऑफर करते हैं कि आप हमारी कंपनी के अंदर आइए और हमें सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम कराइए। क्योंकि बाहर जो मोटिवेशनल स्पीकर आते हैं वो काफी महंगे होते हैं और उनकी अपने विचारधाराएं होती है, लेकिन हमारे यहाँ जो स्पीकर जो जाते हैं कंपनी के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, वो ना केवल एक भाषण देते हैं लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कैसे करें, जीवन में अप्लाई कैसे करें, उसके बारे में विधियां बताते हैं। वो मेडिटेशन का प्रैक्टिकल अभ्यास कराते हैं और इससे हजारों नहीं लाखों भाई बहने जो इंडस्ट्री में जो भी वर्कर्स है, इम्प्लॉयज है, मैनेजर्स है, उस सब ने अपने जीवन में अनुभव किया कि इस मेडिटेशन करने से ना केवल हमारे जीवन में शांति आई लेकिन उनके जो फील्ड के अंदर लोगों के साथ व्यवहार बहुत अच्छा हुआ, लेकिन उनके परिवार में जो आए दिन किसी ना किसी बात को लेकर झगड़े होते थे, परेशानियां बढ़ती थी, वो बहुत अच्छा उनके अंदर ये पॉजिटिव चेंज आया। तो मेरा यही अनुरोध है कि आप यहां पे आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप जहां से जाओ तो अपने फील्ड में जो भी आपके व्यापारी गण है, उद्योगपति है, उनकी आप अच्छे से सेवाएं करें, उनको भी मोटिवेट करें कि इस योग करने से हमारे जीवन में काफी चेंजेज आते हैं और परिवार में भी शांति रहती है। तो इसका बहुत ही अच्छा अभ्यास करेंगे तो जीवन खुशहाल बन जाएगा। लास्ट एक बात कहकर के अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। एक बार एक व्यक्ति था, वो व्यक्ति बहुत नास्तिक था, उसको जीवन में धर्म कांड कुछ भी मालूम नहीं था, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उसके जीवन में कुछ प्रॉब्लम आई तो किसी ने कहा कि आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आ रही, आप एक काम करो, कथा करा लो। बोला कथा क्या चीज होती है? उसने पहली बार कथा का नाम सुना तो उसने कहा कि कथा कुछ नहीं, कोई बड़ी चीज नहीं होती है, मैं बताता हूं तुम्हारे को कैसे कराना है। फलाने गांव में पंडित जी रहते हैं, उनसे जाके मिल लो, वो सारी विधि आपको बता देंगे। अब दूसरे दिन वो व्यक्ति गया, पंडित जी को बोला, पंडित जी मेरे परिवार में बहुत सारी प्रॉब्लम है, बिजनेस में भी प्रॉब्लम है और परिवार में प्रॉब्लम, लेकिन मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है क्या करूं। किसी ने कहा है कि भाई आप घर में कथा कराओ तो शांति हो जाएगी। बोला ठीक है, करा दूंगा। बोला कितना चार्ज लगेगा? बोला 2000 रुपये लगेंगे। बोला ये तो ज्यादा है, आप थोड़ा कम बताओ। बोलो 1500 दे देना। बोलो ये भी ज्यादा है, तब सबसे कम बता दो। तो पंडित जी ने कहा कोई बात नहीं, 500 रुपये दे देना। पंडित जी ने कहा कि मैं कुछ सामग्री लिख के देता हूं, तुम लेके आ जाना बाजार से, मैं कल तुम्हारे घर पे आऊंगा, फिर कथा कर देंगे। बोला ठीक है। अब व्यक्ति बाजार में गया और वहां से कुछ सामग्री खरीद के लाया। दूसरे दिन पंडित जी उसके घर पे आ गए तो पंडित जी ने कहा कि वो जो भी सामग्री तुम्हें लिख के दी वो लेके आओ, डिस्प्ले करेंगे। लेके आया, उसको सजाया गया। अब पंडित जी ने उस व्यक्ति को कहा कि देख ऐसा है, मैं तेरे को जैसा कहूंगा वैसा ही तुझे करना है। बोला ठीक है। पहली बार उसने कथा का नाम सुना और बैठा तो बैठने को उसको तरीका नहीं आया कैसे बैठा जाता है। तो पंडित जी ने कहा कि मैं तेरे को जैसा कहूं वैसा ही करना है। पंडित जी ने कहा कि भाई ठीक से बैठ। पहली बार बैठा, उसको बैठने का तरीका नहीं आया तो व्यक्ति कहता है पंडित जी को कि ठीक से बैठ। पंडित जी कह रहे मैं तेरे को कह रहा हूं ठीक से बैठ। व्यक्ति कहता है कि मैं तेरे को कह रहा हूं ठीक से बैठ। पंडित जी कहते तेरा दिमाग ठीक है? तो वो कहता तेरा दिमाग ठीक है? पंडित जी ने कहा भाई मैं तुझे बता रहा हूं तेरा दिमाग ठीक है? वो भी कहता मैं तुझे बता रहा हूं तेरा दिमाग ठीक है? ऐसा करते करते पंडित जी को गुस्सा आ गया, पंडित जी ने एक थप्पड़ लगा दिया, उसको भी गुस्सा आया, उसने भी एक थप्पड़ पंडित जी को लगा दिया। बात बहुत आगे बढ़ गई, पंडित जी उसको नीचे पटक के उसके ऊपर बैठ गए, फिर उसने पंडित जी को नीचे पटक के उसके ऊपर बैठ गए। 5-6 मिनट तक मल्लयुद्ध चलता रहा। 10-15 मिनट बाद पंडित जी को याद आया, पंडित जी ने कहा छोड़ दे, उसने भी कहा छोड़ दे, कुर्ते उर्ते सारे फाड़ लिए, बटन वटन सब टूट गए। पंडित जी ने कहा अच्छा, पंडित जी ने कहा कि मुझे याद आया कि भाई इसको मैंने ऐसा कहा था कि जैसा मैं कहूंगा वैसा ही करना है। पंडित जी ने कहा कि भाई छोड़ दे, तो उसने भी कहा छोड़ दे। उसने कहा पंडित जी अच्छा हुआ मैंने 500 रुपए की कथा कराई, 2000 रुपए की कथा में कितना नुकसान हो जाता है। तो ऐसे ही हम अपने जीवन में जब आगे बढ़ते हैं तो हमें जीवन की वास्तविकता समझनी बहुत जरूरी है। तो पिछले 2 दिन से, कल से आप आए हैं, काफी कुछ आपको सीखने और समझने का मौका मिल ही रहा होगा। अगले 2 दिन में बहुत कुछ सीखने और सुनने को मिलेगा आपको। ये भी कैंपस एक प्रकार से इंडस्ट्री ही है। आप यहां देखेंगे लगभग मेरे जैसे 150 से अधिक भाई बहने समर्पित हैं, और साथ साथ कुछ वर्कर्स भी है जो भी यहां सेवाएं दे रहे हैं, उनके भी आप देखेंगे, उनका व्यवहार देखेंगे, उनके साथियों का व्यवहार देखेंगे, तो यहां सब अपने अपना आप से काम कर रहा है। जो समर्पित है वो कोई सैलरी नहीं लेते, सब वॉलेंटरी ही सेवाएं देते हैं, लेकिन आप उनका व्यवहार देखेंगे, एक रोल मॉडल है कि हम अपने घर में अपने उद्योग के अंदर कैसे इस रोल मॉडल को अप्लाई कर सकते हैं। यहां भी कारोबार कर रहे, कोई माला नहीं जप रहा, सब अपने काम से अपने अपने डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं। कोई खाना बना रहा है, कोई डाइनिंग में सर्वे कर रहा है, कोई गार्डन संभाल रहा है, लेकिन कैसे कर रहे हैं, मुस्कुराहट के साथ में। अगर जीवन में अंदर में आध्यात्मिकता है तो हमारा जीवन अपने आप खुशहाल हो जाता है। तो जीवन में आदमी को क्या चाहिए, क्या चाहिए, खुशी चाहिए। और खुशी एक दिन के लिए चाहिए, हमेशा के लिए चाहिए, हमेशा के लिए चाहिए। इसलिए कहते हैं अगर 1 घंटे की खुशी चाहिए तो कई टेस्टी फूड खा लो, अच्छा सा भोजन कर लो। 3 घंटे की खुशी चाहिए तो कोई मूवी देख लो, 6 घंटे की खुशी चाहिए तो कोई बाहर चले जाओ, दिन भर की खुशी चाहिए तो कहीं ट्रिप पे चले जाओ, 2-4 दिन की खुशी चाहिए तो कहीं बाहर चले जाओ टूर्स पे, जैसे आप आए। हमेशा के लिए खुशी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, हमेशा के लिए खुशी चाहिए तो फिर मेडिटेशन सीखना पड़ेगा, क्योंकि जो बाहर हम खुशी ढूंढ रहे हो कुछ समय के लिए, अंदर में खुशी है, आंतरिक खुशी वो हमेशा ही अगर हमें बना के रखनी है तो उसे हमें क्या करना है, मेडिटेशन करना पड़ेगा। और मेडिटेशन करते जाएंगे तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपना घर और परिवार व्यापार सब खुशहाल हो जाएगा। धन्यवाद। ओम शांति।